पिछले 25 वर्षों के दौरान मैंने समस्त संसार की कलीसियाओं का अध्ययन सिद्धांतों और व्यवहारों की खोज करने के लिए किया है कि कौन सी शर्तें एक कलीसिया को स्वस्थ व प्रगतिशील बनाती है। जैसा कि मैंने अपने अध्ययन में पाया है कि पूरे विश्व में विभिन्न कलीसियाएं विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग कर रही है, लेकिन मैंने प्रत्येक प्रगतिशील कलीसिया के में एक सामान्य बात पाई और वह है एक ऐसा नेतृत्व जो परमेश्वर पर विश्वास करने में नहीं डरता है। मैं इसे सत्य के तथ्य के नाम से संबोधित करता हूँ। परमेश्वर लोगों को प्रयोग करता है, ऐसे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और वे वही करते हैं जिन्हें परमेश्वर करने के लिए कहता है। और इस सत्र में मैं आपसे चार तरीकों के विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम, परमेश्वर उस व्यक्ति का प्रयोग करता है जिसके पास स्वप्न है। विश्वास सदैव विचार, एक स्वप्न, एक लक्ष्य, एक दर्शन से प्रारंभ होता है। आप परमेश्वर की वाणी सुनते हैं और आप कहते हैं, परमेश्वर यह वह बात है जिसे मैं करने जा रहा हूँ। जब तक कोई स्वप्न देखना प्रारंभ नहीं करता तब तक कुछ घटित नहीं होता है। प्रत्येक उपलब्धि प्रथम बार विचार से ही शुरू हुई थी। एक पास्टर के दर्शन से बड़ी कोई एक कलीसिया नहीं हो सकती। अगर मैं बुद्धिमान हूँ तो मैं सदैव उन कार्यों को जिसे मैं अच्छी तरह नहीं कर सकता वह दूसरों को सौंपूंगा। अगर मैं अच्छा संगठन नहीं कर सकता हूँ तो मैं दूसरों को संगठन के कार्य को सौंपूंगा। अगर मैं अच्छा परामर्श नहीं दे सकता हूँ तो मैं उन्हें इस भार को सौंपूंगा जो मुझसे अच्छा परामर्श दे सकते हैं। परंतु एक बात जो दूसरों को करने के लिए नहीं सौंपूंगा वह है कलीसिया का नेतृत्व, और वह है कि मैं दूसरों को परमेश्वर पर मेरे लिए विश्वास करने के लिए अनुरोध नहीं करूंगा। मुझको ही दर्शन से संबंधित आदर्श स्थापित करना होगा और मैं सदैव दूसरों को काम पर लगा सकूंगा, दूसरे कार्यों को दूसरों को करने को कहूंगा, लेकिन मुझको विश्वास से संबंधित आदर्श को स्वयं प्रस्तुत करना होगा। अब लक्ष्य क्या है? साधारणतः लक्ष्य विश्वास का व्यक्तित्व है। अगर आपका लक्ष्य अच्छा है तो आप सम्मानित होंगे। मैं आपको चुनौती देता हूँ वह यह कि आप परमेश्वर के लिए महान बातों का स्वप्न देखें। परमेश्वर को आशा दे कि आप वह आपको फैलाएं। स्वयं से पूछे, यदि मैं जानता कि असफल नहीं हो जाऊंगा तो मैं परमेश्वर के लिए क्या प्रयास करता। काश कि यह प्रश्न आपको ऐसा विस्तृत करे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी न हो। एक गलती जो हम सब करते हैं कि हम बहुत छोटा लक्ष्य अपने लिए बनाते हैं और हम उसे बहुत जल्द ही पा लेना चाहते हैं। हम जरूरत से ज्यादा अनुमान करते हैं कि एक वर्ष में हम क्या कर लेंगे और हम जरूरत से कम अनुमान लगाते हैं कि 10 वर्ष में हम क्या हासिल कर लेंगे। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ महान लक्ष्य बनाएं और महान स्वप्न देखें और उस बात का महान दर्शन देखें जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं कि वह कलीसिया की वृद्धि का युग है। क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे बड़ी कलीसिया आज के युग में पाई जाती है? और मुझे यकीन है कि आने वाले सुनहरे दिन अभी भी आने बाकी है, और शायद हो सकता है कि आप ही वह व्यक्ति है जो उन कलीसियाओं का निर्माण करने वाले हैं। अक्सर नौजवान पास्टर द्वारा मुझसे सवाल पूछा जाता है कि मेरा दर्शन कितना बड़ा होना चाहिए। तब मैं सदैव यह कहता हूं, अच्छा मैं आपसे एक दो प्रश्न पूछता हूं। प्रथम, कितने समय तक आप जिस कलीसिया की पासबानी कर रहे हैं उसमें रहने की योजना है? आप यदि उस कलीसिया में मात्र अल्पकाल के लिए रहना चाहते हैं तो आप एक बड़ा दर्शन नहीं रख सकते हैं। एक बार एक नौजवान प्रचारक ने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं कलीसिया में 6 माह तक रहने जा रहा हूं, मेरा दर्शन कितना महान होना चाहिए? मैंने उसने कहा, आपको उस कलीसिया में जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत से वर्षों में होने वाले कार्य के प्रति जरूरत से ज्यादा अनुमान लगाते हैं। आपको इस बात के प्रति भी ईमानदार होना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके गांव में या नगर में या शहर में कितने लोग हैं और आपकी सेवा के द्वारा चुनौती प्राप्त करके और कहे कि प्रभु हम मसीह के लिए यहाँ सभी के पास पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि अब तक वह आखिरी एक व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता है, तब तक आपकी कलीसिया को बढ़ते ही रहना है और दूसरों तक पहुंचते ही रहना है। अब जबकि आप अपनी सेवा के लिए परमेश्वर के दर्शन की खोज कर रहे हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर हमें 3 भागों में यह दर्शन देता है। प्रथम, परमेश्वर आपको यह बताता है कि वह क्या करने जा रहा है और वह कहता है, यह बात मैं तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं। जब हमें मालूम हो जाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है तो हम किसी भी तरीके से उसे पूरा करना चाहते हैं जैसा हम सोचते हैं कि संभव है, और हमें प्राय मुंह की खानी पड़ती है और हम गलतियां कर बैठते हैं और हम गिड़गिड़ाते हुए वापस परमेश्वर के पास आते हैं और कहते हैं, परमेश्वर क्या हुआ, क्या मैं दर्शन चूक गया, क्या मैंने ठीक से आपकी बात नहीं सुनी? और परमेश्वर कहता है, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें सही दर्शन दिया था। वैसे कहा था कि मैं तुम्हारी कलीसिया में क्या करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे समाज में क्या करने जा रहा था, लेकिन तुमने दर्शन के दूसरे भाग पर ध्यान नहीं दिया। दर्शन का दूसरा भाग यह है, परमेश्वर हमें सिखाता है कि कैसे सेवा के लिए जो दर्शन दिया है वह पूरा करने जा रहा है। मैंने ये पता लगाया है कि मूल रूप से जो दर्शन हमने देखा था उससे अलग तरीके से उस दर्शन को पूरा करता है। हम सोचते हैं कि जैसा हम चाहते हैं उसी तरीके से वह भी चाहता है, परंतु परमेश्वर के पास सदैव एक सर्वोत्तम तरीका है, एक कलीसिया के निर्माण करने में, मसीह के लोगों तक पहुंचने में और दर्शन को पूरा करने में। एक बार जब आपको मालूम हो जाता है कि वह क्या करने जा रहा है और तब आप दर्शन के दूसरे भाग को पा लेते हैं कि वह कैसे करने जा रहा है, तब आपको अभी भी दर्शन के दूसरे भाग की प्रतीक्षा करनी होगी। और दर्शन का तीसरा भाग क्या है? कब आपके जीवन में परमेश्वर वह दर्शन कब पूरा करने जा रहा है? जबकि मैंने परमेश्वर के साथ काफी वर्षों तक चलता रहा हूँ, तो मैंने पता लगाया है कि परमेश्वर का समय सदैव सिद्ध है। वह कभी देरी नहीं करता है, कभी भी जल्दी नहीं करता है, सदैव समय का पालन करता है। और अगर आप प्रतीक्षा करेंगे परमेश्वर के समय में, तो वह आपको अपना दर्शन देगा। कई बार यह स्पष्ट नहीं आएगा, एक बार में ही नहीं आएगा। वास्तव में ऐसा मेरे जीवन में कभी भी नहीं हुआ। मेरा दर्शन जो प्रभु देता है वह अक्सर आता है और खोलता है, और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है तो यह स्पष्ट और स्पष्टतर होता जाता है। इसलिए आपको अवश्य ही समय निकालना चाहिए कि आप परमेश्वर के साथ समय बिता सके और उसकी वाणी को सुन सके। जब तक आप उसके साथ समय व्यतीत नहीं करेंगे और उसकी वाणी को नहीं सुनेंगे, तो आप परमेश्वर के दर्शन नहीं पा सकेंगे। अब जबकि आपको परमेश्वर का दर्शन मिल गया है, तब आप विश्वास की दूसरी कुंजी के समीप आते हैं, और वह यह है, परमेश्वर उस व्यक्ति का प्रयोग करता है जो असफलता की जोखिम को उठाते हैं। कौन असफलता की जोखिम उठाने की चाहत रखता है? हमारी कलीसिया का इतिहास, जिस कलीसिया का मैं पास्टर हूँ, सैडलबैक कलीसिया, इसका इतिहास जोखिम उठाने का है। मुझे याद है कि जब हमने कलीसिया प्रारंभ की, हमने अपने खुद के पैसों का इस्तेमाल किया, जो कुछ हमारे पास था, हमारे जीवन भर की बचत कलीसिया को प्रारंभ करने के लिए, क्योंकि हमने इस बात का एहसास किया कि लोग जिनके पास हम पहुंचेंगे वे उन सब की पूर्ति कर देंगे जो कुछ हमने खोया है, और वे सभी भुगतान पत्रों का भुगतान कर देंगे। प्रेरित 15:26 में बाइबल पौलुस के जीवन तथा बरनबास की सेवा की कुंजी को बताते हैं। यह कहती है कि सुसमाचार के लिए उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी। क्या आपकी सेवा में यह अपेक्षित है? मैं जानता हूं आप में से बहुत से जो मुझे सुन रहे हैं अपने जीवन को जोखिम में डाले हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग में आपके लिए एक विशेष प्रतिफल है, क्योंकि आप एक साहसी व्यक्ति है। साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है। साहस तब होता है जब आप अपने भय के बावजूद आगे बढ़ते हैं। साहस तब होता है जब आप उसी बात को करते हैं जिससे अधिक डर लगता है। साहस तब है जब आप कहें, प्रभु यीशु, मैं सब कुछ आपका हूं, और मैं असफलता का जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं, और मैं अपने जीवन की बाजी लगाने के लिए तैयार हूं, मैं यीशु मसीह के लिए अपने नाम का जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। मेरे निजी बाइबल अध्ययन में एक हस्ताक्षर है, नेतृत्व आपकी घबराहट को छुपाने की योग्यता है। मैं सोचता हूं कि यह सत्य है। परमेश्वर डरने वाले लोगों को प्रयोग करता है, लेकिन डर हमें नियंत्रित नहीं करता है। हम अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, और यही सच्चा साहस है। आपने लोगों को यह कहते सुना होगा, परमेश्वर ने मुझे सफल होने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे उसने केवल विश्वास योग्य रहने के लिए बुलाया है। लेकिन सच्चाई यह है, यह एक अर्धसत्य है, क्योंकि परमेश्वर न केवल हमसे विश्वास योग्यता की मांग करता है, परंतु हमसे फल लाने की भी अपेक्षा करता है। फल लाना वह सिद्धांत है जिसे पूरे नए नियम में सिखाया गया है। एक दिन यीशु यरूशलेम शहर में घूम रहा था, उसने एक फल वाले वृक्ष को देखा जो बांझ था, उस पर कोई फल नहीं लगा था। जब वह शहर के बाहर जा रहा था तो उसके शिष्य उसके साथ थे। उन्होंने देखा कि वह वृक्ष सूख गया था और मर गया था। यह इसलिए था कि वे एक सबक सीख सके। वह यह सिखाने की कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में फल लाए। वह हमसे आशा करता है कि हम आत्मा के फल लाए, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम। वह हमसे दूसरे मसीहों के मसीह को मसीह के लिए जीतने के लिए भी आशा करता है। पौलुस ने रोम की कलीसिया से कहा, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे बीच भी कुछ फल पा सकूं। और परमेश्वर केवल विश्वास योग्यता नहीं, परंतु फलयुक्त व्यक्ति भी चाहता है। यीशु ने एक कहानी एक स्वामी के विषय मत्ती 26 में बताई कि उसने अपने प्रत्येक सेवक को तोड़े दिए। एक को उसने एक, दूसरे को दो और दूसरे को उसने 5 तोड़े दिए। और बाइबल बताती है कि 10 तोड़े वाले ने उससे दुगना कमाया और उसने जोखिम लिया और उसने अपने विनिमय को दुगना किया। बाइबल बताती है कि 5 तोड़े वाले ने उससे दुगना कमाया और उसने एक जोखिम लिया और व्यवसाय किया और उससे बड़ा धन कमाया। लेकिन जिस मनुष्य के पास एक तोड़ा था उसने लिया और कहा, वह डर गया था, उसने कहा, मैं इससे लूंगा और जमीन में गाड़ दूंगा और इसे मैं छुपा दूंगा, मैं एक सुरक्षित कार्य करूंगा, आसान कार्य करूंगा। और बाइबल बताती है कि जिस मनुष्य ने दुगना धन कमाया था, जिसने जोखिम उठाया था, सबस, तू एक अच्छा और विश्वास योग्य सेवक है, और उस दूसरे सेवक को जिसने दुगना धन कमाया था, उसने कहा, साबास, तू एक अच्छा और विश्वास योग्य सेवक है, तूने अपने धन को दुगना किया, आ और अपने स्वामी के आनंद में भागी हो। परंतु उसको जिसने जोखिम नहीं लिया लेकिन अपने तोड़े को जमीन में छुपा दिया, उसे स्वामी ने कहा, हे दुष्ट सुस्त सेवक, और बाइबल कहती है कि उसको इस बात के लिए दंड मिला। अब उसने क्या किया? इतनी बड़ी गलती, उसने जोखिम न लेने की गलती की। आप देखिए, यदि आप अपनी सेवा में कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं तब आपको किसी भी विश्वास की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपको कोई विश्वास की आवश्यकता नहीं है तब बाइबल कहती है आप अविश्वास योग्य पाए जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप दोनों विश्वास योग्य जोखिम लेने के द्वारा और परमेश्वर पर भरोसा के द्वारा, वह चाहता है कि हम फलयुक्त भी बने। किसी व्यक्ति ने एक बार मुझसे कहा कि कभी भी किसी पेड़ की फुनगियों तक चढ़ने से डरे नहीं, क्योंकि उसने कहा वहीं पर ही फल मिलेगा। और जब यीशु मसीह आपकी नाव का खेवैया है तो आपको तूफान भरे सागर में डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आपके साथ रहेगा। अब पास्टरों तथा कलीसिया के विरोध में शैतान का पसंदीदा हथियार असफलता का भय है। वह कहना चाहता है, ओह, तुम नहीं कर सकते हो, तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते हो, तुम अपनी कलीसिया को कभी बढ़ा नहीं सकते हो। यह उन वास्तविक सच्चाइयों में से एक है जिससे आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं और महान सपनों को नहीं देखते हैं, क्योंकि आप इस बात से डरते हैं कि वे कभी घटित नहीं होंगे। बाइबल नीति वचन 29:26 में कहती है, मनुष्य का डर एक फंदा है, यह एक धोखा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब मैं इस बात से डरता हूँ कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे तो मैं संकट में हूँ। मुझे इस बात से चिंतित नहीं होना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं प्रभु यीशु की सेवा कर रहा हूँ तो मुझे अपने जीवन में दर्शकों के एक व्यक्ति के लिए जीना सीखना होगा। इस बात की परवाह नहीं करना कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या दूसरे मसीह सोचेंगे और क्या गैर मसीह सोचेंगे, लेकिन केवल एक ही दर्शक यीशु मसीह के लिए जीना चाहिए, ताकि मैं एक दिन उसके सामने खड़ा हो सकूं और उससे यह कहा हुआ सुन सकूं, साबास, तुम एक अच्छे और विश्वासयोग्य के सेवक हो। अतः मुझे अपनी सेवा में असफलता के भय को दूर भगाना होगा। मैं इसको कैसे करता हूँ? असफलता के भय को दूर भगाने के लिए दो तरीके हैं। पहली बात, असफलता की परिभाषा फिर बनाना। असफलता की पुनः परिभाषा बनाना। असफलता एक लक्ष्य तक पहुंचने की असफलता नहीं है। असफलता दर्शन को बिल्कुल पाना नहीं है। असफलता प्रयास नहीं है जिसे पूरा नहीं किया जाए। इसके अलावा असफलता हिम्मत हार जाना है, यहां तक कि प्रयास भी नहीं। सभी लोग गिर जाते हैं। बाइबल बताती है, धर्मी जन यदि 7 बार गिरे तभी वह उठेगा। मैं इस पद को पसंद करता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी जन भी ठोकर खाते हैं। हम सभी गलतियां करते हैं, हम सभी असफल होते हैं, हम सभी वे कार्य करते हैं जिससे हमें लज्जा होती है। लेकिन असफलता उठने से इनकार करना है और फिर से प्रारंभ न करना है। आप कभी भी असफल नहीं है तब तक कि आप हिम्मत न हारे। आप तब असफल है जब तक आप हिम्मत नहीं हारते हैं, और सदैव यह अति शीघ्रता है कि हम हिम्मत हार जाएं। इसलिए यदि आप निराश हैं और हिम्मत हार गए हैं तो वहां लगे रहें, स्थिर रहें, हिम्मत न हारे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। एक और तरीका है जिससे आप अपनी असफलता से बरी हो सकते हैं, और वह यह है, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। बाइबल 1 कुरिन्थियों 10:12 में कहती है कि तुलना करना मूर्खता है। बाइबल कहती है कि यह एक महान गलती है। आपको अपने आप को दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। आपको दूसरी कलीसिया से अपनी कलीसिया की तुलना नहीं करनी चाहिए। यह ऐसे ही है जैसे सेब और संतरे की तुलना करना, वे दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए एक शहरी कलीसिया से ग्रामीण कलीसिया की तुलना करना न्यायसंगत नहीं है, यह उचित नहीं है। कई बार हम तुलनाओं के साथ आराम तलब हो जाते हैं। हम दूसरे मसीहों के जीवन में देखते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, या दूसरों की सेवा को, या दूसरे पास्टरों को, और हम कहते हैं मैं दूसरों के समान ही अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर ने आपको कभी भी दूसरों से तुलना करने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपके समान बनने के लिए आपको बुलाया है, और आप केवल आप बन सकते हैं। जब आप एक दिन स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर आपसे यह नहीं कहेगा, क्यों नहीं तुम बिली ग्राहम के समान अधिक बने, या क्यों नहीं तुम कोई दूसरे प्रसिद्ध पास्टर के समान बने जिसको तुम जानते हो। परमेश्वर कहेगा, क्यों नहीं तुम और अधिक अपने समान बने। मैंने तुमको सिर्फ तुमको बनाया है। तुम ही बन सकते हो। तुम 10 करोड़ में एक नहीं हो, तुम 5 अरब में एक हो। किसी की भी रचना आपके समान नहीं हुई है। और परमेश्वर ने आपको अद्भुत रूप से विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है और आपको अपनी पृष्ठभूमि दी है जिस पर आपका कोई वश नहीं है। आपको अपने माता पिता को चुनने में कोई वश नहीं है, अपने जन्म स्थान चुनने में आपका कोई वश नहीं है, आप किस देश में जन्म लेंगे इस पर आपका नियंत्रण नहीं है। परमेश्वर ने इन लोगों को विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, उसने आपकी रचना की है आपकी एक कारण से। यदि परमेश्वर ने वास्तव में आपको सेवा के लिए बुलाया है और उसने प्रत्येक मसीही को उसकी सेवा के लिए बुलाया है, तब इसका अर्थ यह है कोई लोग है जिन तक आप पहुंच सकते हैं। दूसरों की अपेक्षा सर्वोत्तम, मेरे से कहीं अच्छा, किसी भी दूसरे से कहीं सर्वोत्तम। अतः कभी भी अपने आप की तुलना किसी से न करें। अब जब आप अपने आप की तुलना किसी दूसरे लोगों से करते हैं तो दो बातें होती हैं। प्रथम, या तो आप पाते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप घमंड से भर जाते हैं, या द्वितीय, आप पाते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे अच्छा कार्य कर रहा है और आप निराश हो जाते हैं। दोनों ही तरीकों में यह गिरावट लाता है, यह निराशाजनक है और यह आपकी सेवा के लिए विनाशकारी है। अतः बाइबल बहुत स्पष्ट है, आप अपने आप की तुलना दूसरे लोगों से न करें। जैसा कि मैंने पिछले सत्र में आपसे कहा और मैं इसे फिर से दोहराना चाहता हूं, किसी एक कलीसिया के आकार और शक्ति के में कोई संबंध नहीं है। आप एक बड़ी कलीसिया हो सकते हैं लेकिन फिर भी आंतरिक रूप में निर्बल हो सकते हैं, या आप संख्या में कम हो सकते हैं और शक्तिशाली हो सकते हैं, या आप छोटी और निर्बल कलीसिया हो सकते हैं। बड़ा होना वास्तव में सर्वोत्तम नहीं है और छोटा होना आवश्यक नहीं है कि सर्वोत्तम हो। जो सर्वोत्तम है वह सर्वोत्तम है। परमेश्वर के लिए उद्देश्यों के लिए शक्तिशाली, स्वस्थ और समर्पित होना है। बाइबल बताती है गलतियों 6:4 में, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब एक दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्या आप समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है? यह बताता है, यह उचित है कि जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है उससे हम वैधानिक घमंड ले। जिस प्रकार प्रभु ने मुझे प्रयोग किया है उसमें मैं परमेश्वर का धन्यवादित हूँ। मैं धन्यवादित हूँ जिस तरह उसने मुझे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के मदद में प्रयोग किया है। लेकिन तुरंत ही जब मैं अपने आप की तुलना दूसरों से करता हूँ तब मैं पाप करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर यह नहीं चाहता कि हम अपनी तुलना किसी और से करें। मैं विश्वास करता हूं कि जब आप लक्ष्य निर्धारण करते हैं आपको लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और अपने कलीसिया के लिए दर्शन को इस बात से निर्धारित करना चाहिए कि आप परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। इस बात पर आधारित नहीं है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं आपको हमारी कलीसिया के लक्ष्य और सपनों के बारे में बताऊं तो आप शायद सोचेंगे, अच्छा आप अपने आप को क्या समझते हो, आपको कौन सी बात बहुत विशेष बनाती है। और मैं आपसे यह कहूंगा, मैं विशेष नहीं हूं, मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। मुझे मालूम हो गया है कि मैं एक मामूली मनुष्य हूं जिसे परमेश्वर ने बुलाया है और अनुग्रह से उद्धार हुआ है। लेकिन मुझे मालूम हो गया है कि आपको अपना लक्ष्य बनाना है, लेकिन इस बात पर कि परमेश्वर कौन है इस पर आपका विश्वास होना चाहिए। इस बात की आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर आपका कितना बड़ा है और इस पर आधारित अपनी कलीसिया का लक्ष्य बनाइए। आप देखिए, आपने वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है जब तक कि आपने इस बात का प्रयास नहीं किया जो बात शरीर की सामर्थ्य से होना संभव नहीं हुई। अगर जो कुछ आपकी कलीसिया में हो रहा है और आप इसको समझा सकते हैं कि यह मानवीय शक्ति तथा मानवीय इच्छा मात्र से हुआ है और आपकी कलीसिया में कोई अलौकिक बात नहीं हो रही है, तब परमेश्वर को महिमा कहाँ मिलती है? परमेश्वर को तब महिमा मिलती है जब कोई बात मनुष्य के स्तर पर नहीं हो सकती है। और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप ऐसे जिए कि जैसे असफलता अवश्य ही आएगी जब तक कि परमेश्वर स्वयं आपके जीवन में न आए और कोई आश्चर्य कर्म न करे। आप आश्चर्य कर्मों के दोनों पर जिए, जोखिम में जिए, क्योंकि इसी जगह हम परमेश्वर भरोसा रखते हैं। बाइबल बताती है कि विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। असफलता से कभी डरे नहीं। यदि आप जो कुछ प्रयास कर रहे हैं वह परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसके ऊपर अगर आप वास्तव में प्रभु यीशु पर भरोसा रख रहे हैं और अगर आप वास्तव में उसके नाम से जोखिम उठाते हैं, यदि आप किसी बात का प्रयास करते हैं और वह काम नहीं बनता है तब आप भी असफल नहीं है, क्योंकि आप प्रेम में होकर कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है प्रेम कभी असफल नहीं होता। तो इस बात का निश्चय कर लीजिए कि आपकी सेवा प्रेम से परिपूर्ण है, कि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, कि आप उन लोगों से प्रेम करते हैं जिनसे आप बातचीत करते हैं। मैंने पूरे विश्व में अनेक पास्टरों से बातचीत की है जो ऐसी बातें कहते हैं, आपको मालूम है रिक, मुझे प्रचार करने से प्रेम है, मुझे शिक्षा देने से प्रेम है, मुझे परमेश्वर के वचन से भविष्यवाणी से प्रेम है। यह मुझे कभी भी प्रभावित नहीं करती है। शायद आप एक भीड़ के सामने खड़ा होना पसंद करते हैं, शायद आप एक शिक्षक के रूप में आकर्षण पाना चाहते हैं। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आपको प्रचार करने या शिक्षा देने या न देने से प्रेम है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को आप प्रचार करते हैं उनसे आप प्रेम करते हैं। बाइबल कहती है अगर मुझ में प्रेम नहीं है तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। अगर मैं प्रचार या शिक्षा देता हूं यह एक महान उपदेश हो सकता है, लेकिन मुझ में कोई प्रेम नहीं है। परमेश्वर उनका प्रयोग करता है जिनके पास महान स्वप्न हो, और परमेश्वर उनको प्रयोग करता है जो असफलता की जोखिम उठाने की चाहना रखते हो। तीसरी बात, परमेश्वर उनका प्रयोग करता है जो कलीसिया की प्रगति की आशा रखते हैं, कलीसिया के प्रति भी आशा रखें। आपको वास्तविक तथा सकारात्मक दोनों ही बनना है। आपको अपने गांव के आकार का एहसास करने में वास्तविक होना है और आपके समाज का आकार वह तथ्य है कि आपकी कलीसिया की प्रगति कैसी होगी। लेकिन आपको वास्तविक और सकारात्मक होना होगा कि जो बातें दूसरा व्यक्ति नहीं सोच सकता वह संभव होगा, उसे विश्वास करना कि परमेश्वर कर सकता है। एक हारे और विजयी व्यक्ति में अंतर सिर्फ इतना है, सदैव उसका दृष्टिकोण। यह उत्साह है और यूनानी भाषा में यह दो शब्दों से बना है, इंथियोस, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर में। अगर आप अपने जीवन में उत्साहित रहना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में परमेश्वर को लाना होगा और अपने जीवन के लिए उसका दर्शन पाना होगा और आपको स्वाभाविक तौर में उत्साह प्राप्त होगा। मेरे पसंदीदा वचनों में से एक यानी कि मत्ती 9:29 में यह लिखा है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। मैं इस पद को पसंद करता हूँ क्योंकि परमेश्वर कहता है आपको चुनाव करना है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए होगा। मुझे यह चुनाव करना होगा कि परमेश्वर मुझे कहाँ तक आशीष देगा। मुझे चुनाव करना होगा कि वह मेरी सेवा में क्या करेगा। मुझे चुनाव करना होगा कि वह हमारी कलीसिया में क्या करेगा। यह सब विश्वास के अनुसार है। अगर आप महान परमेश्वर पर महान विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर महान कार्य करने के योग्य होगा। लेकिन यदि आपका निर्बल विश्वास है तो परमेश्वर केवल छोटी बातें मेरे जीवन में करने योग्य होगा। जबकि आप प्रभु की सेवा करते हैं, आप अनेक परिस्थितियों का सामना करेंगे जो मानवीय दृष्टिकोण से असंभव है, कि मानवीय विचारधारा के अनुसार, आपके सोच के अनुसार कभी भी उस तरह से संपन्न नहीं होगा। और मैं आपसे यह कहूंगा कि कभी भी असंभव परिस्थितियां आपको विचलित न करने पाए, असंभव आपको डराने न पाए। इसके अलावा ये आपको प्रेरणा दे, यह आपको अधिक प्रार्थना हेतु प्रेरित करे, अधिक भरोसा के लिए, अधिक विश्वास के लिए, अधिक कार्य के लिए, अधिक सेवा के लिए, अधिक दान के लिए, परमेश्वर में अधिक भरोसा के लिए। इसके अलावा भी कभी इससे ज्यादा आपने कभी ऐसा किया हो। आप देखें कि पास्टरों और कलीसिया के अगुओं के लिए शैतान का पसंदीदा वाक्य है, तुम नहीं कर सकते। सच्चाई यह है कि शैतान झूठा है। बाइबल बताती है कि वह झूठों का पिता है। इसलिए अब शैतान यह कहता है, तुम नहीं कर सकते, असंभव है। आप कह सकते हैं, शैतान तुम झूठे हो। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि जिस कलीसिया का मैं पास्टर हूँ उसको शैतान को लज्जित करने के लिए बनाइए। इस कलीसिया के बारे में इतना प्रभावशाली होना चाहता हूँ कि जब शैतान हमारी कलीसिया के बारे में सोचे, ओ मैं उस कलीसिया की बातचीत पसंद नहीं करता हूँ, मैं उस कलीसिया के बारे में सोचना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि ये वह कलीसिया है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जहाँ वे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जहाँ वे विश्वास का कदम उठाते हैं। हर्सन टेलर, जो चीन में एक मशहूर मिशनरी था, एक बार उसने कहा कि परमेश्वर तीन स्तरों में कार्य करता है, असंभव यह पहला स्तर है, संभव यह दूसरा स्तर है और संपन्न यह तीसरा स्तर है। यदि आप केवल परमेश्वर पर विश्वास करें तो आज का असंभव कल का आश्चर्यकर्म बन सकता है। और प्रत्येक बार जब आप असंभव शब्द का प्रयोग करते हैं तो स्वर्ग में हंसी उठती है, क्योंकि यह शब्द परमेश्वर के शब्दकोश में नहीं है। मेरे पास एक शब्दकोश अध्ययन में असंभव शब्द को खोजे तो आप देखेंगे कि वह मेरे शब्दकोश में कटा हुआ है, क्योंकि यह परमेश्वर के शब्दकोश में नहीं है, यह मेरे में भी नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बाइबल कहती है जो विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अतः परमेश्वर उनको प्रयोग करता है जो कलीसिया की प्रगति की आशा करते हैं। परमेश्वर उनको प्रयोग करता है जो आशा करते हैं कि वह सहायता करने वाले लोगों को लाएगा। एक छोटा सा कार्ड मैं अपनी जेब में बहुत वर्षों से रखता आया हूँ और वह यह कहता है, पहले ही दिन जब से मैंने कलीसिया का प्रारंभ की, वह कहता है, महान लोग मेरी सहायता करने के लिए तैयार है, सही समय पर सही तरीके से, उन लोगों को जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं वायदा करता हूँ कि मैं हिम्मत न हारूंगा, चाहे कोई मदद करने वाला भी न हो, लेकिन मेरी आवश्यकता के प्रबंध के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। भजन संहिता 37:5 कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर समर्पित कर दें और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और उस कार्ड के दूसरी तरफ यह कहता है कि परमेश्वर के पास तुम्हारी मदद करने के लिए सारी सुविधाएं हैं जिसका तुमने विचार ही नहीं किया। हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास योग्यताएं, कौशल और चिंताएं और संपर्क है, और जो परमेश्वर आपके जीवन में लाएगा ताकि वह अपनी योजना को पूरा करे। अतः अपनी आंखों को खोले और अपने आसपास लोगों को देखें, अपने कानों को खोले और सुने वे क्या कह रहे हैं। आज कल अगले सप्ताह आप किसी से मिलेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति आपकी एकदम सही आवश्यकता हो, और वह सही व्यक्ति बिल्कुल ठीक समय पर आपके पास आएगा और उन बातों को पूरा करेगा जिनकी आवश्यकता है, और इस बात से आप ताज्जुब करेंगे कि परमेश्वर ने इसकी प्रबंध कितनी सुंदरता से की है। अपने 20 वर्षों की पास्तरी सेवा में मैंने ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर कई बार पाया है और मैंने ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर कई कई बार पाया है और मैंने पाया कि जब आप परमेश्वर के कार्य की आशा अपने जीवन में करते हैं तो वह करता है। अब यहाँ चौथी कुंजी है और वह यह है, परमेश्वर उनका उपयोग करता है जो कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। यह एक विश्वास का तत्व भी है, कभी हिम्मत नहीं हारना, धैर्य बनाए रखना, दृढ़ निश्चयी होना, टिकाऊ होना और कहना, मैं कभी भी अपनी हार नहीं मानूंगा। परमेश्वर उन लोगों का उपयोग करता है जिनको नहीं मालूम कि हिम्मत कैसे हारा जाता है। बाइबल लूका 9:62 में कहता है, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। दूसरे शब्दों में हम सदैव पीछे मुड़कर देख नहीं सकते हैं, हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है, यहाँ तक कि हम थके क्यों न हो, यहाँ तक कि हम पर दबाव क्यों न हो, यहाँ तक कि हमारी आलोचना क्यों न की जाए। अब मुझे सफलता के रहस्य को बताने दीजिए पासवानो। रहस्य अपने आलोचकों पर विजय पाने में है। लोग आपकी हमेशा आलोचना करेंगे, चाहे आप जो कुछ भी करेंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे, और वे आलोचकों की प्रतिमूर्ति स्थापित नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप प्रभु की सेवा करते हैं, परवाह न करते हुए कि लोग क्या कहते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। बाइबल सेवा को एक दौड़ के रूप में प्रदर्शित कर दी है, और यदि आप दौड़ेंगे तो कुछ लोग आपका उत्साह बढ़ाएंगे और कुछ लोग आपको निराश करेंगे, और मैं आपको कहूंगा कि यदि आप अपनी दौड़ को पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा कीजिए। आपको दोनों को नजरअंदाज करना होगा, वे जो आपका उत्साह बढ़ा रहे हैं और वे जो आपको निराश कर रहे हैं, क्योंकि वे आपकी दौड़ को पूरा करने में विघ्न पैदा कर सकते हैं। महान लोग केवल साधारण लोग हैं जिनके पास विशेष मात्रा में दृढ़ निश्चयता पाई जाती है। महान लोग वे लोग हैं जिनको पता नहीं कि कैसे मैदान छोड़ा जाए, वे केवल लगातार बढ़ते रहते हैं। बाइबल गलतियों 6:9 में कहती है, हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। क्या आपने इसे सुना, हियाव न छोड़े तब आप फसल काटेंगे, अगर आप हिम्मत न छोड़े। मैंने अपने एक अध्ययन के दौरान यह पाया कि औसत रूप से पास्टर निराशा के शिकार हो जाते हैं और अपनी कलीसिया को केवल आठ लोगों के कारण छोड़ देना चाहते हैं। मैंने पता लगाया है कि जब एक पास्टर वहां ठहरे रहने का फैसला करता है तो समस्या पैदा करने वाले लोग आखिरकार छोड़ देते हैं, लेकिन जब पास्टर छोड़ देता है तो समस्या खड़ा करने वाले लोग ठहरे रहते हैं। तो आपको स्वयं फैसला करना है कि कौन जीतने जा रहा है, परमेश्वर या शैतान, और निराश न हो। मैं अपनी निराशा के अनुभव को कभी नहीं भूल सकता। मैं एक नौजवान प्रचारक था और कैलिफोर्निया की एक छोटी सी कलीसिया में उपदेश दे रहा था, और मैं पूरे सप्ताह के लिए प्रचार कर रहा था, और किसी ने भी मसीह के लिए निर्णय नहीं किया, और किसी मसीह ने मसीह के लिए पुनः समर्पण नहीं किया था। रविवार को दोपहर मैं बहुत निराश था, मैं बहुत निम्न और हताश महसूस कर रहा था। मुझे याद है कि मैं अपने घुटनों पर होकर प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा, पिता, मैं बहुत निराश हूँ और मुझे नहीं मालूम कि इस निराशा के साथ मैं क्या करूं। क्या मुझे इसे लड़ना चाहिए, क्या मुझे इस प्रयास को छोड़ देना चाहिए, या क्या मुझे इस हताशा का सामना करना चाहिए, या निराशा जो मैं महसूस कर रहा हूं, या जिस प्रवाह से यह चल रहा है उसे अपने जीवन में चलने दूं या न चलने दूं। कृपया मुझे दिखा, प्रिय पिता, कि मैं अपनी इस निराशा के साथ क्या करूं। मैंने अपनी प्रार्थना समाप्त की, मैं उठा और इस कलीसिया के पास्टर के अध्ययन में बैठा था और उसके ताक में अनेक पुस्तकें थी, मसीह पुस्तकें। निश्चय ही मैं मसीह पुस्तकें पढ़ने का शौकीन हूँ और उसकी सभी पुस्तकों को देख रहा था, और कुछ क्षणों के बाद पास्टर उस कक्ष में आ गया और मैं उसकी पुस्तकों की ओर देख रहा था। मैंने एक रिकॉर्ड एल्बम पाया और उसमें जेरी फालवेल नामक व्यक्ति का उपदेश था। मैंने उस रिकॉर्ड को लिया और उसे देखा और वह संबोधित किया गया था, एक साल में आपकी कलीसिया की उपस्थिति दुगनी कैसे बढ़ाए। मैं उस समय एक नौजवान प्रचारक था, मैं पास्टर नहीं था, लेकिन मैंने इस कलीसिया के पास्टर से कहा, क्या आप बुरा नहीं मानेंगे यदि मैं इस रिकॉर्ड को आपके रिकॉर्डर पर सुनूं, क्योंकि एक दिन मैं भी एक पास्टर बनूंगा। और उसने कहा, निश्चय। अतः उसने उस रिकॉर्ड को अपने रिकॉर्डों पर रखा और अज्ञातवश मात्र उसने उस रिकॉर्ड के दूसरे हिस्से को बजाया जहां शीर्षक था, क्यों आपको कभी निराश नहीं होना चाहिए और क्यों आपको कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और यह ऐसा था कि मानो परमेश्वर मुझे सीधे बातचीत कर रहा हो। और उस उपदेश में मैंने एक ऐसा वाक्य सुना जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता, वह यह था, आप किसी भी व्यक्ति की महानता उसकी योग्यता से निर्धारित नहीं करते या उसके धन से या उसकी शिक्षा से, लेकिन आप एक व्यक्ति की महानता आप इस बात से निर्धारित करते हैं कि किस बात से उसको निराशा होती है। अब मुझे आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछने की आज्ञा दीजिए। निराशा के लिए आपको कौन सी बात प्रेरित करती है? आपकी कलीसिया में एक शब्द की आलोचना और आप हिम्मत हारने के लिए तैयार? क्या एक प्रश्न की खातिर आप अपनी मिनिस्ट्री और पास्टरशिप छोड़कर भाग जाना चाहते हैं? यह शैतान के लिए एक विजय है। कभी भी हिम्मत न हारे। पहले विश्व युद्ध के दरमियान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। उस युद्ध की चरमोत्कर्ष पर नाजियों द्वारा इंग्लैंड में बॉम्ब विस्फोट किया गया। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को एक बहुत मशहूर पुरुषों के स्कूल में भाषण देने के लिए बुलाया गया था और उस स्कूल के सभी विद्यार्थियों से कहा गया था अपने पेन और कागज तैयार रखे क्योंकि प्रधानमंत्री एक विशेष संदेश देंगे। ठीक समय पर प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल उस स्कूल में पधारे। वे उस कक्षा में प्रवेश किए जिसमें विद्यार्थी गण भरे हुए थे और उन्होंने इस पुरुषों से कहा जो युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा, सज्जनों, कभी भी हिम्मत न हारो, कभी भी हिम्मत न हारो, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, हिम्मत कभी नहीं हारो। और वो चारों ओर घुमा और कक्ष से बाहर निकल गया। उसको उतना ही कहना था। और हमें ही प्रभु यीशु की सेवा करने में सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखना है। हिम्मत हारना सदैव जल्दी का कदम है। परमेश्वर उनका प्रयोग करता है जो कभी हिम्मत नहीं हारते। आपको तब तक असफलता नहीं मिलती जब तक कि आप हिम्मत नहीं छोड़ते। अब सच्चाई यह है कि परमेश्वर समस्याओं का प्रयोग हमको उस पर निर्भर रहने के लिए करता है और परमेश्वर हमको नम्र और केंद्रित रखने के लिए कठिनाइयों और यहां तक आलोचनाओं का प्रयोग करता है और हमें कलीसिया के प्रति समर्पित रखता है। अब आप सोच रहे होंगे, रिक, मैं अपनी कलीसिया के लिए एक बड़ा दर्शन रखना चाहता हूं। मैं महान स्वप्न देखना चाहता हूं। मैं महान कार्य के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना चाहता हूं। लेकिन मेरे पास इतना बड़ा स्वप्न कैसे हो सकता है बिना पूरी तरीके से घमंड किए? बिना बड़े घमंड और अहम के बिना मेरे पास इतना बड़ा दर्शन मेरे जीवन में कैसे हो सकता है? मुझे आपको कुछ रास्ता सुझाने दीजिए कि परमेश्वर हमें नम्र रखता है। परमेश्वर ये बातें आपके जीवन में लाता है कि आप नम्र बने ताकि वह एक महान रूप में कार्य करे और साथ ही साथ उस पर केंद्रित करे। पहली बात, आपकी बेइंसाफी से आलोचना की जाएगी। जब आप वास्तव में वह करना चाहेंगे जो परमेश्वर आपसे चाहता है, उसी क्षण जब आप प्रभु की सेवा अपने संपूर्ण मन, आत्मा और हृदय और सामर्थ्य से करना प्रारंभ कर देंगे तो दूसरे लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। आप पर आक्रमण किया जाएगा, आपको दोषी ठहराया जाएगा। जबकि आप अपनी कलीसिया में प्रगति लाने का प्रयास करेंगे और जबकि आप मसीह के लिए लोगों को जीतना चाहेंगे, बहुत से लोग नहीं समझेंगे और वे कहेंगे, ओ, आपके पास केवल एक बड़ा घमंड है, आप केवल एक बड़ी कलीसिया बनाना चाहते हैं ताकि आप अच्छा महसूस करें। अधिकांश लोग नहीं समझते हैं खोए हुए के लिए परमेश्वर को कितनी परवाह है। बहुत से लोग ये नहीं समझते हैं कि यीशु मसीह मरा है और आपके गांव के प्रत्येक व्यक्ति, आपके शहर के प्रत्येक व्यक्ति, आपके नगर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना खून बहाया और इनमें से सभी व्यक्तियों को मसीह को जानना है और यही वह प्रेरणा है जो आगे बढ़ती रहती है। परंतु आपकी आलोचना होगी और आप गलतफहमी के शिकार होंगे। आपके पास इतनी बड़ी समस्या होगी जिसका हल मात्र प्रार्थना द्वारा पाया जा सकता है और परमेश्वर आपको नम्र बनाए रखेगा और आपको अपने घुटनों पर रखेगा क्योंकि कुछ बातें केवल प्रार्थना द्वारा ही हल की जा सकती है। आप मूर्खतापूर्ण गलतियां भी करेंगे केवल इसलिए कि आप एक सेवक हैं और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और आपको बुलावट मिली है, इसलिए आप सिद्ध नहीं है। आप एक मनुष्य है और कभी कभी आप बुरी गलतियां करेंगे जो शर्मनाक है। परमेश्वर इसका प्रयोग आपको नम्र बनाए रखने के लिए करेगा। तब वास्तव में वह स्वप्न बहुत बड़ा होगा यदि वह परमेश्वर की ओर से होगा। जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है वह इतना बड़ा होता है कि आप असफल हुए बिना चुप नहीं सकते। आप असफल होने जा रहे हैं जब तक कि परमेश्वर कोई आश्चर्यकर्म न करे और तब यह एहसास करे कि जब आप सफल हो जाएंगे और परमेश्वर आपको सेवा में आशीष दे, दूसरे लोग इसके लिए श्रेय लेंगे और वे कहेंगे, हमने इससे किया, जबकि वास्तव में परमेश्वर ने आपके द्वारा किया। इसके बारे में आप फिक्र न करें। परमेश्वर महान कार्य कर सकता है उसके द्वारा जो इस बात की फिक्र नहीं करता कि इसका श्रेय किसको मिलता है। और अगर आप श्रेय दूसरों को दे देते हैं तो आप पाएंगे कि जिस प्रकार आपने सोचा भी नहीं संभव, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने योग्य होगा। बाइबल पहली कुरिन्थी 3:7 में कहती है, इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। अतः मैं यह कहूंगा, इस बात की चिंता न करें कि आपको नम्र बने रहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको नम्र रखेगा। यह परमेश्वर के लिए बहुत आसान है कि आपको नम्र रखे। ऐसा मैंने बहुत बार पाया है, जब मैं घमंड करना शुरू करता हूँ, परमेश्वर के पास बहुत से विभिन्न तरीके मुझे नम्र बनाए रखने के लिए है, जिसमें मेरी पत्नी व बच्चों द्वारा भी नम्र बनाए रखना शामिल है। लेकिन गहरी समस्या क्या है जो पास्टर और अगुओं से संबंधित इस मुद्दे पर है, जो आत्मविश्वास है। सच्चाई यह है कि हमने आपसे इस सम्मेलन में बातचीत इस बार पर की है कि परमेश्वर के 5 उद्देश्यों पर आप अपनी कलीसिया कैसे बनाएं। इस बात को जानना उत्साहजनक है कि परमेश्वर आपकी कलीसिया और आपके जीवन में क्या कर सकता है। लेकिन सच्चाई यह है, हम घर जाते हैं, हम योजना बनाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन यदि हमारा कलीसियाओं में वृद्धि का विस्फोट होना है तो हमने से बहुत से लोग डर कर मर जाएंगे। यह हमें डरा कर मार डालेगा, क्योंकि हम इस प्रकार की वृद्धि के लिए तैयार नहीं है। अतः आपसे मुझे आत्मविश्वास के मुद्दे पर कुछ क्षणों में बातचीत करनी है। मसीह में आत्मविश्वास। मैं जानता हूं कि यह एक समस्या है, क्योंकि इस समस्या का अनुभव मैंने सैडलबैक कलीसिया के पहले वर्ष में ही कर लिया था। जब मैं गया और सैडलबैक शुरू किया, जैसा मैंने बताया, तो उसमें केवल एक और परिवार था जो मेरे साथ कार्य कर रहा था, और हमारे पास प्रथम आराधना सभा में 7 लोग थे। लेकिन अगले वर्ष के दौरान कलीसिया के लोग 100 से अधिक संख्या में बढ़ गए। वास्तव में हमारी कलीसिया के प्रथम वर्ष में यह संख्या 150 लोगों तक बढ़ गई। अब यह एकमात्र कलीसिया थी जिसकी मैंने पासबानी की थी। मैंने पहले किसी और कलीसिया का पास्टर कभी नहीं रहा, और वर्ष के अंत पर मेरे पास ये सब शिशु मसीही थे, और मैं अब भी सारे कार्य करता था और सब प्रार्थना और शिक्षा के कार्य भी, और एक दिन मैं लगभग 18 घंटे काम किया करता था। मेरी अपनी सामर्थ्य खर्च हो गई थी। मैं भावनात्मक तथा आत्मिक रूप में थक चुका था, क्योंकि मैं बहुत अधिक कठिन परिश्रम कर रहा था। जैसा मैंने कहा, दिन में लगभग 18 घंटे। और वर्ष के आखिर रविवार को जब मैं अपनी मंडली को शिक्षा देने के लिए खड़ा हुआ, तो मात्र थकावट और शक्ति के ह्रास के कारण मैं बेहोश हो गया और मैं मंच पर गिर पड़ा। उसके ऐसा हो जाने के बाद एक गहरी निराशा मेरे पर छा गई, और मैं डर गया था कि मैं कभी फिर वापस उठकर प्रचार कर सकूंगा, कि मैं फिर से बेहोश होना प्रारंभ कर दूंगा। और उस पूरे महीने, जो अगला महीना था, मैंने पूरे महीने छुट्टी ली और मैं रेगिस्तान चला गया कि मैं वह समय प्रभु के साथ अकेले बिताऊं। मैंने अपनी कलीसिया में प्रचार नहीं किया, मैंने किसी दूसरे का प्रचार और शिक्षा के लिए नियुक्त किया, और मैं बाहर रेगिस्तान में था। मैं और अधिक निराशा तथा मायूसी से गुजर रहा था, और उस समय मैं अपने मस्तिष्क में 2 मुख्य डर से होकर गुजर रहा था। पहली बात थी, परमेश्वर, मैं इसके योग्य नहीं था, तू मेरे जीवन में बहुत अधिक आशीष दे रहा है। मैंने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस कलीसिया को मेरे तथा मेरी पत्नी द्वारा सिर्फ अपने हाथों में संभाला कि हम एक साल में 150 लोगों को जान सकें, और मैंने ये सोचा कि परमेश्वर की ओर से इस आशीष के योग्य मैं नहीं हूँ। जैसे परमेश्वर का जन्म मुझे होना चाहिए, वैसा मैं नहीं हूँ। प्रार्थना में विश्वास योग्य रहने में ही मुझे कठिनाई लगती है। यहाँ तक प्रतिदिन की मेरी प्रार्थना के जीवन से संबंधित, जो एक पास्टर के लिए बहुत कम है। इस प्रकार मैंने अपने आप को बहुत अयोग्य और अपराधी महसूस किया, इसलिए कि परमेश्वर ने मुझे इतनी आशीष दी जिसके मैं योग्य नहीं हूँ। जो दूसरा भय मेरे पास था, परमेश्वर, मैं इस बोझ को नहीं उठा सकता। कलीसिया बहुत शीघ्र बढ़ रही है। मेरे पास इस बात का एहसास करने के लिए अधिक संवेदनशीलता थी कि यदि यह वृद्धि, जो एक साल में 150 लोगों की थी, वह अगले वर्ष में कितनी होगी, और मुझे इस बात का शीघ्र एहसास हो गया कि अगले वर्ष यह हजारों में वृद्धि होगी। मैंने थोड़ा ही जाना, आज तक जबकि मैं सैडलबैक कलीसिया का पास्टर हूँ, सप्ताह के अंत में 14,000 से अधिक लोग कलीसिया में आते हैं। हमें सभी लोगों को बैठाने के लिए 4 सभाओं को संपन्न करना पड़ता है, और मैं इसके योग्य नहीं हूँ। और उस रेगिस्तान के बाहर परमेश्वर ने 3 बातें मुझको बताई, जिसने सेवा के मेरे जीवन को बदल दिया। पहली बात, उसने कहा, तुम सही हो रिक, तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम्हारे पास कमी नहीं है और तुम कभी नहीं कर सकोगे, क्योंकि यह सब मेरे अनुग्रह द्वारा है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इसलिए आशीष नहीं देता है कि हम इसके योग्य है, वह अपने अनुग्रह के कारण हमें आशीष देता है। मैं मसीही बनने के लिए योग्य नहीं हूँ, सेवा के योग्य तो और भी नहीं। दूसरी बात मुझे एहसास करना है, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा, रिक, यह किसकी कलीसिया है? और मुझे कहना पड़ा, यीशु, यह आपकी कलीसिया है, यह मेरी कलीसिया नहीं है, यह यीशु आपकी कलीसिया है। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुम्हारा ध्यान लोगों के निर्माण में लगा रहे और मैं कलीसिया का निर्माण करूंगा। और मुझे याद है कि मैंने कुछ इस तरह कहा, ठीक है परमेश्वर, ऐसा व्यवहार मेरे लिए अच्छा है। और मैं कल्पना करता हूं कि मैं अपने कार्यालय की कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ, जहां बैठा करता था, और कहा, प्रभु यीशु, आप मेरी कुर्सी पर बैठिए, अब आप इस कलीसिया के पास्टर हैं। आखिरकार यह मेरी ईमानदारी, मेरी कलात्मकता, मेरे कार्य का कारण कलीसिया नहीं चल रही है, यह परमेश्वर की कलीसिया है और आखिरकार वह इसका जिम्मेदार है। अब मैंने जब ऐसा किया, तब मैंने कहा, ठीक है यीशु, आप इस कलीसिया के जिम्मेदार है और मैं नहीं, आप इसके संचालक है। मेरे शरीर में एक महान विश्राम का संचार हुआ। यह एक बोझ की तरह था, पर्वत के समान, जो मेरे कांधों पर से लुढ़क गया और अचानक से कई महीनों के पश्चात मैं अपने आप में विश्राम महसूस करना शुरू किया। अतः मैंने एहसास किया प्रथम बार कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह का पुरस्कार हूँ और मैंने एहसास किया विश्वास से अनुग्रह द्वारा कार्यशील मेरे द्वारा हुआ है और मैंने एहसास किया कि यह उसकी कलीसिया है। उसमें से तीसरी सच्चाई सामने आई जहां मैंने एहसास किया कि मैं परमेश्वर का जन हूं, इस कलीसिया के लिए, इस समय के लिए हूं। कोई भी बात इस सच्चाई को मेरे जीवन में हिला नहीं सकती। कोई आलोचना नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई बीमारी नहीं, पैसे की कमी नहीं, कोई भवन नहीं। मैं इस कलीसिया के लिए परमेश्वर का जन हूं। अब मैं इस बात के प्रति कायल हूं कि जिस तरह वे अगुओं को परमेश्वर उपयोग करता है वह सदैव संकट में उत्पन्न होता है। एक सच्ची अगुवाई सदैव परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास पर आधारित है। आपको इस बात को याद रखना आवश्यक है कि सब कुछ जो परमेश्वर आप में और आपके लिए और आपके द्वारा और आपके लिए वह करता है वह अनुग्रह द्वारा विश्वास से करता है। आप इसके कभी भी योग्य नहीं बन सकते। यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम जाओ और फल लाओ। अब मैंने जाना है, जबकि मैंने हजारों पास्टरों से बातचीत की है, 63,000 से अधिक पास्टर उद्देश्य प्रेरित कलीसियाई सेमिनार से गुजर चुके हैं और आप में से बहुत से कलीसिया के अगुए सेवा के प्रति अपराधी महसूस करते हैं और आप बहुत अयोग्य महसूस करते हैं और आप सोचते हैं परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है। मैं आपको बताऊंगा क्यों। अनुग्रह के कारण आपको उपयोग करने के लिए चुना है। अनुग्रह यह सच्चाई है जिससे परमेश्वर मेरी सारी गलतियों को जानता है जो मैं अपनी सेवा में करने जा रहा हूँ, फिर भी उसने मुझे चुना है। अनुग्रह वह सच्चाई है कि परमेश्वर जानता है कि सेवा में आप कौन सी गलतियां करने जा रहे हैं और आपको फिर भी चुना है। इसलिए शैतान द्वारा आप अपने को धोखा न खाने दे। आप में से कुछ लोगों का अतीत बहुत पापमय रहा और जब आप अपने अतीत के बारे में सोचते हैं तो आपको शर्म महसूस होती है जो आप अपने अतीत के अपराध भावना के कारण महसूस करते हैं। शैतान द्वारा आप धोखा न खाएं। जब शैतान आपको आपके अतीत की याद दिलाता है तो आप उसे उसके भविष्य की याद दिलाइए, क्योंकि बाइबल कहती है कि वह नरक में बर्बाद हो जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा। अब सच्चाई यह है कि परमेश्वर साधारण लोगों का उपयोग करता है। अगर परमेश्वर ने सिद्ध लोगों का उपयोग किया होता तो कुछ भी काम नहीं होता, क्योंकि दुनिया में कोई सिद्ध लोग नहीं पाए जाते हैं। जो कुछ आपको करना है वह यह है कि आपने को एकांत कर ले और परमेश्वर के साथ एकांत में बिताए, जहां आप अपना बुलाहट का पुनः आश्वासन प्राप्त कर सकें कि परमेश्वर आपको विश्वास से अनुग्रह द्वारा उपयोग कर रहा है और वह इस प्रकार आपके जीवन में कार्य करेगा। आपके जीवन में मैं विश्वास के महत्व को कभी भी जरूरत से ज्यादा बल नहीं दे सकता। बाइबल कहती है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बाइबल कहती है जो कुछ विश्वास से नहीं है वह पाप है। बाइबल कहती है तुम्हारे विश्वास के अनुसार यह तुम्हारे लिए होगा। अतः मुझे आपसे एक अत्यंत व्यक्तिगत प्रश्न पूछने दे। अपनी सेवा में परमेश्वर से किस बात की आशा कर रहे हैं कि वह करे? बिना आपके परिचय ही मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको दे सकता हूं कि वह वही कर रहा है जिसकी ठीक आशा आप परमेश्वर से कर रहे हैं, उससे अधिक या कम नहीं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, रिक, परमेश्वर आपका उपयोग क्यों करता है? जिस कारण से परमेश्वर मेरा उपयोग करता है वह इसलिए कि मैं उससे यह आशा करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं क्या हूं लेकिन इसलिए कि यीशु कौन है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई कार्य किया लेकिन इसलिए कि प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले किया। परमेश्वर हमारा उपयोग विश्वास से अनुग्रह द्वारा करता है और जब हम विश्वास को उस अनुग्रह में रखते हैं तब वह हमें उपयोग करने के योग्य बनाता है। हम अविश्वास द्वारा परमेश्वर को बहुत अधिक सीमित कर देते हैं। यदि आप शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रत्येक समय परमेश्वर स्वर्ग से बाहर सक्रिय हुआ और पृथ्वी पर सक्रिय हुआ और एक आश्चर्य कर्म किया। इस कारण क्योंकि किसने विश्वास किया। अब मुझे इसे बिल्कुल स्पष्ट करने दें। आपके जीवन में कुछ तथ्य हैं जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहा, जैसे कि मैंने पहले बताया। मैं इसको सार्वभौमिक तथ्य के रूप में संबोधित करूंगा। आपने नहीं चुना कब और कहां आपका जन्म होगा। आपने नहीं चुना जो स्वाभाविक वरदान आपको दिए गए हैं। आपने नहीं चुना कि किस देश में आपने जन्म लिया और ये बातें आपके नियंत्रण से बाहर थी। एक बात जो आप करते हैं उसमें आपका नियंत्रण है। आपका इस बात पर नियंत्रण है कि आप कितना अधिक विश्वास परमेश्वर पर करते हैं और यह आपका चुनाव है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर कैलिफोर्निया में एक महान कलीसिया का निर्माण कर रहा है। जिन कलीसिया का मैं पास्टर हूं वह है सडलबैक कलीसिया। इसलिए नहीं कि हमारी कलीसिया के लोग बहुत विशेष हैं या क्योंकि मैं कोई दूसरे पास्टर से विशेष हूं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ एक महान कलीसिया का निर्माण कर रहा है क्योंकि उसने कुछ समूह के लोगों को पाया जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने का चुनाव किया या उससे दूसरी कलीसिया से थोड़ा अधिक उसके लिए विश्वास करने का चुनाव किया, और यह हमारा चुनाव है। आप जानते हैं कि मैं ऐसा सोचा करता था कि परमेश्वर जिनको आशीष देने का चुनाव करता है उसमें वह बहुत न्यायी नहीं है। मैं सोचा था कि परमेश्वर स्वर्ग से नीचे देखेगा और कहेगा मैं तुम्हारा उपयोग करने जा रहा हूँ और मैं तुम्हारा उपयोग करूंगा और शायद मैं तुम्हें उपयोग करूंगा, लेकिन बाकी तुम सब लोग बहुत बुरे हो। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैंने केवल अपना चुनाव किया है और सब इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। और एक दिन मैंने बाइबल में पढ़ता हूँ दूसरे इतिहास 16:9 में, जहाँ लिखा है देव यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। यह पद कहता है परमेश्वर ऐसे लोगों को उपयोग करने के लिए खोज रहा है। परमेश्वर लोगों को उपयोग करने के लिए खोज रहा है, और अगर आप उपयोगी बन जाएंगे, अगर आप उपलब्ध होंगे, अगर आप अपने विश्वास को उसके अनुग्रह पर रख देंगे, परमेश्वर आपको महान तरीके से उपयोग करेगा और आप उपयोग किए जाएंगे उसकी महिमा के लिए। आप उसकी महिमा के लिए उपयोग किए जाएंगे। मेरे जीवन के वचनों में एक वचन प्रेरित 13:36 है। यह हमें दाऊद के बारे में बताता है। यह बताता है दाऊद ने अपनी वंशावली में परमेश्वर के उद्देश्यों की सेवा की। यही मैं चाहता हूँ प्रार्थना करना कि लोग मेरे बारे में कह सके जब मैं मरूं कि मैंने परमेश्वर के उद्देश्यों की सेवा की अपनी वंशावली में। और यही प्रार्थना मेरी आपके लिए भी है, ताकि लोग आपके बारे में कह सके कि आपने परमेश्वर के उद्देश्यों की सेवा की। आराधना, प्रचार, संगति, शिष्यता और सेवा का उद्देश्य, वे उद्देश्य परमेश्वर के अनंतकालीन उद्देश्य, जिन उद्देश्यों की सेवा आप अपनी वंशावली में करेंगे और तब आप मरेंगे। क्यों कोई इस पृथ्वी पर और रहना चाहेगा जब परमेश्वर उस व्यक्ति का उपयोग पूरी तरह से कर लेगा? आप चले जाते हैं ताकि आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहे सर्वदा के लिए। अतः परमेश्वर के उद्देश्यों के प्रति विश्वास योग्य बने रहे और कभी भी हिम्मत न हारे। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग इस समय बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि जो इस सम्मेलन में सुन रहे हैं वे एक बड़ी वेदना का अनुभव कर रहे हैं अपने हृदय में। मैं प्रशांत महासागर के पास रहता हूं और कई बार अपने विचारों की शुद्धता के लिए परमेश्वर के समीप जाता हूं। मैं जाता हूं और समुद्र के तट पर बैठ जाता हूं और मैं लहरों को जाते हुए देखता हूं, और जब मैं लहरों को जाते हुए देखता हूं तब तट पर बहुत सी कुरूप चीजें पड़ी होती है। यहाँ बहती हुई लकड़ी होती है और यहाँ कूड़ा करवट है, यहाँ मलवा है और तट उतना सुंदर नहीं है। वास्तव में जब लहर चली जाती है तो तट कुरूप हो जाता है, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि लहरें अक्सर वापस आती है। अब ठीक अभी आप में से कुछ के लिए लहर आपके जीवन से बाहर होगी और शायद आप महसूस करें कि परमेश्वर दूर है, और आप महसूस कर रहे हैं कि आप अकेले छूट गए हैं, और शायद आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पास अपनी सेवा को पूरा करने के लिए सामर्थ्य नहीं रह गए हैं और आप वो करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, थामे रहें, प्रतीक्षा करें, हिम्मत न हारें। आपकी सेवा से लहर बार होगा, लेकिन यह हमेशा वापस आता है। अमेरिका में एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है कठिन समय कभी नहीं टिकते हैं लेकिन मजबूत लोग जरूर, और मैं ऐसा विश्वास करता हूं। और अतः कभी हिम्मत न हारे। और जब आप सोचते हैं मैं यहाँ परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, इस छोटे से इलाके में, इस अंधेरे गांव में, इस स्थान में जहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता है, और इसलिए कि मैं एक बहुत छोटे स्थान पर हूँ या इतनी छोटी गलीसिया में हूँ जहाँ मेरी सेवा से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं आपसे कहूंगा आप एक भयंकर भूल में पड़े हैं, आप गलत हैं। परमेश्वर को आपकी सेवा से परवाह है और परमेश्वर आपका नाम जानता है, आपके सिर के हर बाल उसके द्वारा गिने हुए हैं, और वह आपको प्यार करता है और आपको सेवा के लिए बुलाया है और आपको वहाँ रखा है कि आप उसकी सेवा करें, और बेहतर यही था कि आप सेवा करें जब तक कि वह आपको वहाँ रखता है परमेश्वर की महिमा के लिए और आपकी उन्नति के लिए और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें आपकी सेवा के लिए बुलाया है, और मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी सेवा से आपको परवाह है। हमारी मदद कर कि हम कभी भी दूसरे लोगों से अपनी तुलना न करें। मदद कर कि हम कभी हिम्मत न हारें। मदद कर कि हम महान स्वप्न देखें, महान बातों के लिए आप पर विश्वास करें। मदद कर कि हम आपके लिए महान बातों का प्रयास करें और महान बातों की आशा आपसे करें। मदद कर कि हम आपसे आशा करें कि आप हमारी मदद करने वाले लोगों को लाए और आप पर भरोसा करें, इसलिए नहीं कि हम आपकी आशीषों के हकदार हैं लेकिन आपके अनुग्रह के कारण। और एक दिन आप हमें अपने साथ रहने के लिए घर बुला लें। हमें उस दिन की प्रतीक्षा है ताकि आपके साथ स्वर्ग में रहें, लेकिन जब तक आप घर न बुलाएं, काश कि हम प्रत्येक दिन और हमारी शक्ति का प्रत्येक अंश हमारी वंशावली में आपके उद्देश्यों तथा आपकी सेवा में लगा सके। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।